आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार रुशाली जैन के साथ। फेडरल विपक्ष नेता पीटर डटन का कहना है कि अगर गठबंधन सत्ता में आती है तो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में 80,000 की कटौती की जाएगी। उनका कहना है कि ये चुनावी वादा देश में हाउसिंग की मांग को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। गठबंधन ने ये भी घोषणा की है कि वे यूनिवर्सिटीज में विदेशी छात्रों के लिए 25% की सीमा तय कर देंगे ताकि कुल संख्या को हर साल करीब 2,40,000 तक लाया जा सके। मेलबर्न में प्रचार के दौरान डटन ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो अगले साल से पब्लिक यूनिवर्सिटीज में कुल छात्रों में से केवल 1/4 तक ही विदेशी छात्रों को भर्ती करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं द्वारा मार्च 2025 में जारी एक स्टडी में पाया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या और किराए के दामों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। इस शोध में 2017 से 2024 तक का रेंटल डेटा, सरकारी विभागों की रिपोर्टें और ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का आंकड़ा शामिल किया गया था। इसी तरह ट्रेजरी और प्रधानमंत्री व कैबिनेट विभाग के पूर्व प्रमुख मार्टिन पार्किंसन ने भी पिछले महीने ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू को बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र आमतौर पर उन घरों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करते जिन्हें स्थानीय लोग किराए पर लेना चाहते हैं। दूसरी ओर मतदाताओं को सस्ती ऊर्जा का वादा करते हुए लेबर पार्टी ने घरों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों पर $4,000 तक की छूट देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने ब्रिस्बेन में एक चुनावी रैली के दौरान ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार अगर दोबारा चुनी जाती है तो 1 जुलाई 2025 से ये योजना लागू की जाएगी जिसके तहत आम घरों में बैटरी लगाने के लिए शुरुआती खर्च में सब्सिडी दी जाएगी। इससे बिजली का बिल सालाना करीब $2,300 यानी 90% तक कम हो सकता है। ये बैटरियां सोलर पैनल वाले घरों में दिन में चार्ज होती हैं और रात को उपयोग में लाई जा सकती हैं। लेबर पार्टी के मुताबिक ये $2.3 बिलियन की योजना 2030 तक 10 लाख नई बैटरी लगाने में मदद कर सकती है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी का कहना है कि ये कदम घरों के लिए लंबे समय तक फायदेमंद साबित होगा। आम चुनाव 3 मई को होने तय हुए हैं। वहीं सेनेटर जेसिंटा नापिजम्पा प्राइस का कहना है कि अगर ऑस्ट्रेलियाई सरकार वाकई में क्लोज द गैप के तहत प्रथम राष्ट्र समुदायों के हालात सुधारना चाहती है तो उसे ये देखना होगा कि इंडिजिनस अफेयर्स पर अब तक जो फंड खर्चा हुआ है उनका एक पारदर्शी ऑडिट किया जाए। ये बयान मार्च 2025 में प्रोडक्टिविटी कमीशन के क्लोजिंग द गैप डैशबोर्ड की रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें बताया गया कि कारावास, चाइल्ड प्रोटेक्शन और आत्महत्या जैसे गंभीर समस्याओं में आदिवासी और गैर आदिवासी ऑस्ट्रेलियाइयों के बीच फासला या तो बना हुआ है या बढ़ता जा रहा है। विपक्ष इंडिजिनस अफेयर्स प्रवक्ता सेनेटर प्राइस ने NITV रेडियो से बातचीत में कहा कि इन बुनियादी समस्याओं को सुलझाने के लिए जो सेक्टर काम कर रहा है उसमें अधिक जवाबदेही की आवश्यकता है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। 23 मार्च को गाजा के दक्षिणी हिस्से में 15 आपातकालीन कर्मियों की मौत के मामले में इजरायली सेना ने माना है कि उसके सैनिकों से गलती हुई थी। हालांकि सेना का यह भी कहना है कि मारे गए कुछ लोग हमास से जुड़े हुए थे। ये हमला उस काफिले पर हुआ जिसमें फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी की एम्बुलेंसें, संयुक्त राष्ट्र की एक गाड़ी और गाजा की सिविल डिफेंस का एक फायर ट्रक शामिल थे। ये गाड़ियां राफा इलाके के पास थीं जब उन पर गोलीबारी हुई। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट का कहना है कि पिछले 8 सालों में उसकी टीम पर यह सबसे घातक हमला है। पहले इजरायली सेना का कहना था कि ये गाड़ियां बिना लाइट के आई थी, लेकिन अब वे मान रही है कि ये दावा भी गलत था और ये जानकारी मौके पर मौजूद सैनिकों से मिली थी। सेना का कहना है कि मारे गए 15 लोगों में से 6 को वे हमास से जुड़ा मानती है, लेकिन इस दावे के कोई भी साक्ष्य उन्होंने अब तक प्रस्तुत नहीं किए हैं। और अब अंत में खबरें भारत से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रामनवमी के अवसर पर भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन कर रहे हैं। ये पुल तमिलनाडु के रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है और समुद्र के ऊपर 2.08 किलोमीटर तक लंबा है। इसमें 18.3 मीटर के 99 स्पैन और 72.5 मीटर का एक वर्टिकल लिफ्ट स्पैन शामिल है, जो केवल 5 मिनट में जहाजों के लिए खुल सकता है और 3 मिनट में बंद हो सकता है। इस ब्रिज की ऊंचाई पुराने पुल से 3 मीटर अधिक है, जिसमें बड़े जहाज आसानी से गुजर सकते हैं। इसमें अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है, जैसे एंटी कोरोजन कोटिंग, पॉलीसिलिकॉन पेंट और फाइबर री इन्फोर्स्ड प्लास्टिक, जो इसे 100 वर्ष तक के लिए टिकाऊ और सुरक्षित बनाते हैं। 535 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पुल 5 साल में पूरा हुआ। प्रधानमंत्री ने 2019 में इसका शिलान्यास किया था और आज उद्घाटन कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 6 अप्रैल को रामनवमी के शुभ अवसर पर मैं तमिलनाडु के अपने भाई और बहनों के साथ रहने के लिए उत्साहित हूं। नए पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। मैं अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में प्रार्थना करूंगा। 8,300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा करेंगे और फिर विभिन्न रेल व सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसी के साथ 6 अप्रैल 2025 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। डीजे वृशाली को इजाजत, नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।